अब इसमें बीच में बात हुई बाबुल की, तो बाबुल जो है ना ये इराक का पुराना नाम है, यरूशलेम पर हमला करने वाला बुख्त नसर यहीं का बादशाह था। नमरूद भी यहीं से आया, बल्कि नमरूद जो ना ये इराक के बादशाहों का लकब होता था, जैसे हम पढ़ चुके ना तुब्बा और कैसरा, कैसर किसरा, ये मुख्तलिफ किंगडम्स जो थी उनके बड़े थे, तो इराकी बादशाहों का टाइटल जो था वो नमरूद होता था। इसकी जमा है नमारदा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में चूंकि जिन्नात और इंसान घुल मिल के रहा करते थे, तो जिन्नों ने जादू की तालीम लोगों को दी, अल्लाह ताला ने उसको तोड़ करने के लिए फरिश्तों को भेजा। ये बड़ा अहम नुक्ता है इधर, ये जो दो बात हुई ना हारूत और मारूत दो फरिश्तों की, अल्लाह ने ये इल्म जादू का या इसके गलत या सही होने को फरिश्तों के ज़रिए से लोगों को बताया। या एक सवाल पैदा होता है, क्यों भाई अंबिया से क्यों नहीं कराया, सुलेमान अलैहिस्सलाम को ही सिखा दिया जाता ये अमल और वो लोगों को बताते, तो अल्लाह ताला ने यहाँ फरिश्तों को क्यों बुलाया, ये एक सवाल उठता है इधर। मैं दोहरा देती हूँ, शायद आप बात ज़्यादा अच्छी तरह समझ जाएंगे, कि यहाँ अल्लाह ताला ने कहा कि दो फरिश्ते हारूत और मारूत नाम के अल्लाह ने मुकर्रर किए, जिनको जादू करना आता था, लेकिन वो लोगों को कहते थे मत सीखो हमसे जादू, हम देखो आजमाइश है, हमें अल्लाह ने तुम्हारी आजमाइश के लिए भेजा है या हम खुद ही आजमाइश में इस चीज़ की, लेकिन जब लोग उनको इसरार करते तो फिर वो सिखा देते। तो फरिश्तों को इस जगह लाने की वजह क्या है? पहली वजह तो इसकी ये है कि नबियों के ज़रिए से अल्लाह ताला दुनिया में मोजज़ात करवाते थे। आप देखिए कि वो काम जो आम तौर पे ना हो किसी नबी के हाथ से हो जाए, इसको मोजज़ा कहते हैं। और मोजज़े सिर्फ अंबिया तक हैं, आज तो हमारे यहाँ मोजज़ात शायद बीबियों के भी हैं और उसके बाद बुज़ुर्गों और वलियों के भी हैं। एक जुमला याद रखें कि मोजज़े का ताल्लुक़ सिर्फ़ नबी से है, और मोजज़ा ऐन जीम ज़ा से है, अजज़ा, वो चीज़ जिसको समझने से अक़ल आजीज आ जाए। बस आग जलाती है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में बैठे हुए हैं और जल नहीं रहे, इससे अक़ल आजीज है। आज भी कुछ लोग जिस्म पे कोई ख़ास केमिकल मल के आग में जाएं और कि हमें आग नुकसान नहीं देती, वो मौजज़ा नहीं है, वो जादू है। ये बहुत बारीक सा फ़र्क होता है, इसको समझ जाएंगे ना तो फिर आप जादू और मौजज़े में कभी भी इंशाल्लाह गलती नहीं खाएंगे। अल्लाह ने यहाँ नबी की बजाय फरिश्तों को इसलिए भेजा कि अगर नबी होगा तो मौजज़े और जादू में खलत मलत हो जाएगा, इख्तलाफ हो जाएगा। फिर दूसरी बात ये कि देखिए कि जादू इतना कभी फेल है, अगर नबी को सिखाया जाता या नबी सीखता तो ये उसकी शान को नहीं आता, नबी की शान के ख़िलाफ़ है। फरिश्ते चूँकि गुनाहों और सवाब से मावरा है, जो अल्लाह ने कहा कर दो, दुनिया में हर काम उन्हीं के ज़रिए हो रहा है, मारते भी फरिश्ते ही हैं, तो चूँकि वो ऐसी मखलूक है जिसका हिसाब किताब नहीं होना, तो अल्लाह ने फरिश्तों के ज़रिए से ये काम करा लिया, मतलब वो करें और उसके बाद ख़त्म हो जाए ये बात। फिर इसी तरह एक और भी चीज़ इससे समझ में आती है कि अल्लाह जिससे जो काम लेना चाहे उसकी मर्ज़ी है, और इससे ये भी पता चलता है कि बाज़ दफ़ा लोग जब सतही तौर पे किसी चीज़ को देखते हैं तो वो दुरुस्त नहीं होती, लेकिन असल में उसके अंदर कुछ और है। जिस नबी से अल्लाह ताला ने लोगों की हिदायत का काम लेना था, अगर एक दफ़ा उनके नाम के साथ जादू का ठप्पा लग चुका होता तो बाकी उनकी सारी ज़िंदगी लोग उनके बारे में शक ही होते। अगली ज़िंदगी में अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम कोई मौजज़ा ही दिखाते तो शक होना, अच्छा जी ये जादू हो सकता है। तो ये सारे दलाइल हैं इस बात के कि सुलेमान की बजाय अल्लाह ताला ने दो फरिश्तों से ये काम कराया, आजमाइश थी बस, और लोग फिर भी उस आजमाइश में फेल हो गए। वो कहते थे लोगों मत सीखो हमसे, हम आजमाइश के तौर पर आए हैं, लेकिन अमूमन लोग जादू में जब पढ़ते हैं ना तो उस वक्त उनका यही दिल होता है कि हम इससे फ़ायदा ले लें। तो लिहाजा इन आयतों के नज़ूल से फिर मदीना के अंदर ये बात मारूफ हो गई थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी थे और वो जादूगर नहीं थे। अब ये तो था इन आयतों का एक हल्का सा सिनेरियो। इसी की रोशनी में अगर हम थोड़ी सी बात जादू और उसकी हकीकत और असर पे कर लें तो हो सकता है कि किसी को पता चल जाए और कुछ सीखे, क्योंकि ये वो टॉपिक है कि जिस पे हमेशा लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, और अक्सर लोगों को ये वहम रहता है कि मेरे पे किसी ने जादू किया हुआ है, और जादू का करना कराना और इसकी इस्लाम में क्या बात है, इतनी तफसील से नहीं करेंगे कि आप भी करने ही लग जाएं, तरीके नहीं सीखेंगे, लेकिन क्या जादू है कि नहीं। मैं कोशिश करूंगी कि बुलेट पॉइंट्स में बात करूं ताकि आप नोट कर सकें, यानी यस नो में कह लें या क्वेश्चन आंसर्स में। पहली बात ये कि क्या जादू की कोई हकीकत है? बिल्कुल है। जादू बरहक है? हक है। क्या जादू किसी नबी पे भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुआ था, लेकिन उसका असर आपके नबूवत के कामों पे नहीं पड़ा था। हाँ, आप भूलने लगते थे। आपके अज़वाज मुतहरात भी कहती हैं, और एक और हदीस में भी मिलता है कि नबी सल्लम अपनी बीवियों के पास नहीं गए होते थे, लेकिन आपको ये शक पड़ने लगता था कि मैं गया हूँ। इस तरह का मसला होता था, और इसकी वजह से आप परेशान रहते थे, हत्ता के फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा और नबी सल्लम ने कहा कि मेरा वो मसला अल्लाह ने हल कर दिया। कि फरिश्तों ने बताया कि लबीद बिन आसिम नाम का एक यहूदी है, उसने आप पर जादू करवाया, और एक जाजान नाम का एक कुआँ है, उसके अंदर आपके बालों को गिरहें लगा के वहाँ रखे हुए हैं। 11 गिरहें थीं, सूरत फलक और सूरत नास, ये 11 आयतें नाजिल हुई और वो गिरहें खुलती गईं और अल्लाह ताला ने नबी सल्लम को उस जादू के असर से बचा लिया। इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो पढ़ेंगे जब सूरत नास और फलक पे आएंगे तो इसकी डिटेल, लेकिन जादू हो सकता है। दूसरी बात है कि जादू कहते किसको है? अरबी में इसको सहर कहते हैं। सहर, हर वो चीज़ जिसका सबब ना मालूम हो। देखिए, जादू में और आम बीमारी में या आम कामों में कुछ फ़र्क होता है। जादू हमेशा एक अचानक तब्दीली होती है। डॉक्टर्स हैं, सोर्स ही नहीं मिल रहा उनको। अब प्लीज़ यहाँ बैठे हुए ये ना सोच लें कि हम भी उसी लाइन पे चल रहे हैं। यानी अगर आपकी बीमारी डायग्नोज नहीं हो रही तो इससे कोई ये नहीं बात निकलती कि नाउज़ बिल्ला आप पे जादू हुआ है। लेकिन जादू अमूमन क्या होता है कि जिसमें सोर्स नहीं दिखता, ऐसा अमल कि जिसका ज़रिया ना समझ आए। बस एक चीज़ है भाई, सर में दर्द है, उसकी वजह समझ आ रही है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं सारे टेस्ट ठीक हैं, कोई मसला नहीं, इसके बावजूद मरीज़ जो है वो परेशान रहता है। ठीक है, फिर एक और जादू की चीज़ क्या होती है कि ये अचानक होता है, एक दिन में दिल बदल जाता है। शौहर बीवी के बीच में तो ये बहुत गहरा चलता है, मोहब्बत। बल्कि बाज़ कहते हैं कि जादू का मतलब क्या है कि शौहर को बीवी से और बीवी को शौहर से दूर किया जाए। कुछ उलमा इस हद तक भी हैं कि वो कहते हैं कि जादू होता ही सिर्फ शौहर और बीवी के बीच में, और नबी सल्लम का भी कुछ इसी किस्म का ही था, लेकिन इसके अलावा भी हो सकते हैं। जादू के ज़रिए से अमूमन तीन किस्म के जादू जो हैं वो बहुत मारूफ हैं, जिसके अंदर एक क्या आता है कि नज़रबंदी कर दी जाती है, चीज़ वो नहीं होती जो आपको दिखने लगती है, और आप कुछ और समझ रहे होते हैं लेकिन असल में वो कुछ और होता है। और इसकी मिसाल भी कुरान पाक में मौजूद है, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के जादूगरों का तذکرہ था, उसमें कुरान पाक में आता है कि सहरु आयुनन नास, उन्होंने लोगों की आंखों पर जादू कर दिया। इसी तरह युहय्यिलु इलैहि मिन सहरिहिम अन्नहा तसा, उनके सहर से मूसा के ख्याल में ये आने लगा कि ये रस्सियों के सांप दौड़ रहे हैं। तो ये पहली किस्म होती है कि जिसमें नज़रबंदी, चीज़ों की हकीकत बदली जाती है। आज के दौर में ये जो आम बात है ना, जो मैजिक शोज़ होते हैं जिसको लोग फ़न के तौर पे करते हैं, वो यही होता है। बज़ाहर दिखाते ये हैं कि मुर्गी है और उसने अंडा दे दिए, कुछ इस किस्म की चीज़ें होती है ना, हाथ में से कबूतर निकाल लिया, ये जिसको कहते हैं ना हाथ की सफाई होती है। सबब होता है लेकिन हमें नहीं दिख रहा होता। ठीक है, फिर इसी तरह एक दूसरी चीज़ क्या होती है कि जिसमें तखयल, ख्यालात पे कुछ इस तरह की बातें पढ़ के फूंक दी जाती हैं कि ख्यालात बदलने लगते हैं। इसके बारे में भी सूरह शोरा में आता है, हल उनब्बियुकुम अला मन तनज़्ज़ल शयातीनु तनज़्ज़लु अला कुल्ली अफ्फाके नसीम, मैं तुमको बताता हूँ कि किन पर शैतान उतरते हैं, हर बोहतान बांधने वाले गुनाहगार पर उतरते हैं। ये अमूमन वो होता है जो शायरी और मौसीकी और इस तरह की कहानियाँ के, जिसमें इंसान की सोच बदल जाती है। तीसरी एक चीज़ वो होती है जिसमें चीज़ों की हकीकत ही बदल जाती है। मसलन एक इंसान है तो उसको पत्थर बना देना, किसी को जानवर बना देना, और इस तरह लगे कि वो मतलब कुछ और है, ये भी चीज़ जादू का एक हिस्सा है। एक कॉमेडी कॉल है किसी का, पहले वो यानी यहूदी थे और बाद में वो मुसलमान हुए, तो वो कहते हैं कि लौ ल कलिमातुन अकूल हुन्ना लजालतनिल यहूदु खिमारा, कि अगर चंद कलेमात ना होते जिनको मैं पाबंदी से पढ़ता हूँ तो यहूदी मुझे गधा बना देते। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं जब ये मुसलमान हुए थे तो यहूद को इनसे बहुत हो गया था, पीछे हमने इनका किस्सा थोड़ा सा पढ़ा था, तो ये कहते हैं कि यहूद का जादू इतना चलता था कि मुझे डर था कि अगर कुछ मेरे पास ऐसे कलेमात ना होते तो वाकई लोग मुझे, बल्कि काब अखबार कहते हैं ये बात ना, काब अखबार, ये अब्दुल्ला बिन सलाम नहीं, ये दूसरे एक यहूदी थे जो मुसलमान हो गए थे। फिर लोगों ने इनसे पूछा भी कि वो क्या कलेमात थे, तो वो कलेमात भी मौजूद हैं कि जिसमें वो अल्लाह की पनाह की बात है, औज़ु बिवजहिल्लाज़ीमिल्लज़ी लैसा शैयुन अज़मु मिन्हु वबिकलिमातिल्लाहित्तामातिल्लती ला युजावज़ुहुन्ना बर्रुन वला फ़ाजिरुन वबिअस्माइल्लाहिल्हुस्ना कुल्लहा मा अलिमतु मिन्हा वमा लम आलम मिन शर्रि मा खलक़ वबरा वज़रा। ये इमाम मालिक की रिवायत है। तो बहरहाल इसमें आप देखें कि अल्लाह की पनाह में आने की बात है, अल्लाह ताला के नामों के साथ और इस तरह की चीज़ों से, तो ये सब कुछ मुमकिन है। हमारा क्या काम होना चाहिए? पहली बात है कि किसी भी नियत से जादू नहीं किया जा सकता, जादू किसी हालात में भी जायज़ नहीं हो सकता, ये कबीरा गुनाह है। और ऐसा जादू जिसमें कुफ्रिया चीज़ें आ जाएं, अल्लाह का इनकार करना पड़े, ये सारी चीज़ें, तो वो तो इंसान के ईमान को ख़त्म करता है। क्योंकि जादू जो होता है ना, इसके लिए एक चीज़ जहन में रख लें कि शैतानों को खुश करेगा, जो जितना खुश करेगा उतना उसको जादू करना आएगा। इसके लिए जिन्नों को, शैतानों को खुश करना होता है, और उसके लिए हर मनमाना तरीका, मसलन अल्लाह का कुफर, नाशुक्री। बाद जगह कुरान पाक के सफ़ों की बेअदबी की गई, जिन्नात, ये जो लोग कब्रिस्तानों में जाके चिल्ले काटते हैं, वहाँ जाके फिर वो 40 40 रातों तक कभी सूरह जिन पढ़ते हैं, कभी कुछ, फिर कुछ जिन्नात उनके कब्ज़े में आते हैं, फिर वो उनको खुश करने के लिए बाज़ दफ़ा नजरें न्याजें करवाते हैं। कभी आप सुने कि काला बकरा मांगा है उन्होंने, आप कहते हैं अच्छा हम खुद ही ज़िबा करेंगे, वो कहेंगे नहीं हम खुद करेंगे, हमें ला दें। क्यों? कि वो जिन्नों के नाम, जैसे हम अल्लाह के नाम पर काटते हैं ना, वो फिर उन शैतानों को खुश करते हैं। बाज़ दफ़ा पीरियड्स के गंदे खून के साथ कुरान पाक को लिखा जाता है, और उस शख्स का जादू सबसे ज़्यादा चलता है जो गंदा रहता है, जुनाबत में रहते हैं ये लोग, और बाज़ दफ़ा टॉयलेट के अंदर कुरान पाक के सफ़ों तक को यूज़ करते हैं। एक दफ़ा एक तस्वीर मैंने खुद देखी कि नीचे कुरान पाक के सफ़े ज़मीन पे रखे हुए हैं और ऊपर एक औरत रक्स कर रही है। यानी हर वो काम करना पड़ता है इनको कि जिससे शैतान खुश हो जाए, उसको खुश करते हैं, जितना खुश करेंगे उतना काम होगा, वरना क्या होगा? अगर ये उसको खुश नहीं करेंगे ना, तो जादू जो कर रहा होता है ना, वो पकड़ा जाता है। और आपको पता है कि ये जादू शुरू कहाँ से हुआ? इसके बारे में कहते हैं कि यानी कुछ ख़ास इलाके हैं कि जहाँ से जादू का सिलसिला शुरू हुआ, बंगाल का लफ्ज़ भी लोग करते हैं इसमें पेश, लेकिन जो तारीख इसकी मुझे समझ आ सकी वो कुछ इस किस्म की थी, जिससे ये लफ्ज़ मैजिक भी थोड़ा सा मिलता है। मैं एक कोटेशन आपको पढ़ के सुना देती हूँ, और इससे आप समझें कि इस्लाम ने किस तरीके से एक एक चीज़ को हमारे सामने खोल दिया ना। अगर हम कुरान पाक को ना पढ़ें ना समझें तो हम कितनी जगह पे गलत थे। बस दफ़ा लोग इसलिए भी करते हैं कि क्या है जी, अब हम तो अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं, किसी और का तो हम नुकसान नहीं कर रहे। अल्लाह ताला ने एक बात कह दी कि ये कभी भी खैर नहीं पा सकते। सूरह तौहा में भी आप पढ़ेंगे कि जादूगर कभी फला नहीं पाता, वो कहीं से भी आ जाए, कहीं भी गुजर जाएगा, उसके साथ ये मामला नहीं होता। अभी इंशाल्लाह वो मेरे सामने आती है तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसका ये जो लफ्ज़ मैजिक का है, इसकी भी असल क्या है। सहर की इब्तिदा कब, किस दौर में और किस जगह से हुई, इस बारे में वसूख के साथ कुछ कहना बहुत दुश्वार है। जादू कदीम ज़मानों से आज तक हर दौर में हर जगह नज़र आता है, हत्ता कि ऑस्ट्रेलिया के कबायली लोग, अमेरिका के कदीम बाशिंदों, वस्ती अफ्रीका के कबाइल, और मिस्री, यूनानी, रोमन्स, बेबलिनिस सब के अंदर ये चीज़ मौजूद थी, और ये चीज़ वहाँ से होते हुए मुख्तलिफ जगह होते हुए आ गई हमारे पास। ये बरेसगीर में कहाँ से आया? ये कहते हैं कि ये किताब है जादू की हकीकत और इसका हुक्म और खतरात, गाज़ी अज़ीज़ मुबारकपुरी की, उसमें से आपको पढ़ के सुना रही हूँ। कहते हैं कि कदीम ईरान में एक कौम थी, मग, मग उनको कहते थे, जो जरतुश्त के पैरोकार थे। संस्कृत में जादू को माई गग कहते हैं, यानी मगों का इल्म। अंग्रेजी लफ्ज़ मैजिक इसी से माखूज है, यानी मैजिक असल में उसी की थोड़ी सी एक तब्दीली के साथ बात है। कहते हैं कि ईरान में जब मग कौम हिंदुस्तान आई तो जादू का इल्म भी अपने साथ ले आई, फिर इनसे हिंदुस्तान के लोगों ने सीखा, लोग करिश्मे दिखाकर इससे फ़ायदा उठाते थे, और उसके बाद फिर लोगों में ये बात आम होती गई, और होते होते मागी या मैगी लफ्ज़ जो है वो मैजिक में बदला, और वहीं से फिर ये जादू के लिए मुख्तलिफ लफ्ज़ जो थे ये इस्तेमाल होने लगे। फिर इसके लिए आप देखिए कि जादू करने वाले को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दोनों तरफ से उसको हालात मालूम करने पड़ते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब वो किसी की एक कहानी सुन लेते हैं फिर दूसरे की बात अपने मुवक्किलों के ज़रिए से सुनते हैं, और बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि इससे क्या होता है, हमें तो सब पता है। हालांकि इनके कारिंदे होते हैं, जैसे अब इस वक्त हम कुरान पढ़ रहे हैं ना, इंसानों की एक ख़ास रीच है, आप इस दीवार से नहीं पलांग सकते लेकिन जिन्नात पलांग सकते हैं, वो उड़ भी सकते हैं, वो शीशों में से भी गुजर सकते हैं, दीवारों में से भी गुजर सकते हैं। तो जिसने जादू करना या खराना होता है ना, वो लोग फिर ऐसे लोगों को अपने काबू में कर लेते हैं, जैसे अपने गुलाम बना लेते हैं, फिर वो उनसे जो कहेंगे उनको करना पड़ता है, और उनको काबू में करने के लिए इनको ख़ास चिल्लेबाजी करनी पड़ती है, और इसकी तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि हम अपने आप को कैसे बचाएं, क्योंकि जितना आप इन चीज़ों में पढ़ते हैं उतना ही अपने आप को मुश्किल लगेगा। तो इसके लिए यानी कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, मैं पॉइंट्स की सूरत में आपको बता देती हूँ कि जादू से बचने बचाने का क्या तरीका है, क्योंकि जितना हमें ये पता होगा इतना इंशाल्लाह ताला हम दूसरों के लिए होंगे। पहली चीज़ यह है कि एहतियात ज़रूरत है, और हमें वाकिफ़ होना चाहिए इस बात से कि जादू क्या होता है, कैसे होता है, और कभी भी आपको अपनी तबीयत में कोई तब्दीली ऐसी दिखे कि जिससे आप अपने ऊपर काबू ना रखें तो समझे कि शैतानी असर है। देखिए, ज़रूरी नहीं होता कि कोई जादू ही करे, बाज़ दफ़ा हमारी कुछ ऐसी आदत होती हैं कि हम पे रात चलते शैतान भी आशिक हो जाते हैं। एक ऐसी कहानी बहुत सच्ची, मतलब मैंने खुद उस लड़की को मिली हुई हूँ, और मैंने पिछली क्लास में भी सुनाई थी, मेरे वालिद हैं तो उनके दोस्त की बेटी थी, बिल्कुल आम लड़की थी, मैं भी उसको पहले भी मिली हुई थी, फिर उसकी मंगनी कहीं होनी थी, शादी के बिल्कुल दिन करीब थे, तैयारियों में थे, और एक दिन परेशानी हो गई, क्या जी सुबह लड़की उठी है उसकी आवाज़ ही नहीं है, बोल ही नहीं सक रही, बिल्कुल ऐसी ही है जैसे सुनती है बोल नहीं सकती, ज़ुबान बंद हो गई। खैर, अब बहुत बड़ी बात थी, चंद दिन के बाद शादी थी, इलाज शुरू हुए, डॉक्टर्स कह रहे हैं कुछ नहीं है, किस्सा मुख्तसर जो बातें लंबे चौड़े बातों के बाद हुई कि उस लड़की के ऊपर कोई जिन आशिक था, कभी बचपन से या किसी वजह से, कभी आप देखें कि जो खूब पूरे फुल एक्सपोजर के साथ बाहर जाते हैं, बाज़ दफ़ा खुले बालों के साथ हैं, इस पे ही आशिक होते हैं, लंबे नाखूनों पे इनको आप इश्क आता है, फिर इसी तरह खुले मैदान में जैसे मग़रिब के करीब अगर किसी दरख्त के नीचे से गुजरे, किसी हड्डी को पकड़ लिया, क्योंकि हड्डी इनकी खुराक है, नबी सल्लम ने कहा कि हड्डी से इस्तंजा ना करो, ये तुम्हारे जिन भाइयों की खुराक है, तो वो जिन उस पे आशिक था, सारी ज़िंदगी उसने उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन जो ही अब उसने देखा कि इसकी शादी हो जाएगी तो जेलसी में उसने उसके मतावाज़ बंद कर दी, फिर बहुत सारे मरहले होते हुआते गुजरते हुए सारी बात का खुलासा क्या हुआ कि फिर एक उसके फिर आवाज़ ठीक भी हो गई, और वो मतलब उस ज़ाहिर है कि उन्होंने उसका कोई भी इलाज ही किया होगा इस तरीके से, तो ये हो सकता है। शौहर बीवी के दिल में एक दूसरे के लिए नफरत डाल देंगे, ऐसे लगेगा कि जैसे एक दूसरे को देख ही नहीं सकते, तो इसके लिए इंसान को खुद अपना इलाज करना चाहिए, अपना अकीदा पुख्ता रखें। उस बंदे पे जादू का असर चल ही नहीं सकता जिसने दिल की गहराई से ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत को समझा, यकीन करें। फिर सुन्नत के ऊपर सख्ती से अमल, जितना बिदात से आप दूर रहेंगे ना इतना इंशाल्लाह ताला शैतान आपके ऊपर काबू नहीं पाएगा, और इन सारी बातों के दलाइल भी हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि सिर्फ हम सारी बातों को जमा कर लें। फिर उसके बाद एक और चीज़ के शैतान को अपना हकीकी दुश्मन समझिए, जितना आपको इसका यकीन होगा कि शैतान मेरा दुश्मन है उतना आप उसके हर अमल पे तनकीद से देखेंगे, क्योंकि उसने आदम और हव्वा के सामने भी कस्में खाई थी कि इन्नी लकुमा लमिनन नासहीन, कि मैं तुम्हारा बड़ा खैरख्वाह वेल विशर हूँ, तो ऐसी बातों से धोखा ना खाइए, क्योंकि शैतान तो इंसान के लिए गलत बातों को आसान करता है। फिर इसके बाद अगली चीज़ क्या है कि उन शकूक को फौरन ख़त्म कर दें जिससे आपको फिक्र लग जाए कि आपका दिल शैतान के काबू में जाएगा। मसलन, आपको दीन की किसी बात पे शक हो रहा है, इस्लाम की किसी बात पे शक हो रहा है, पता नहीं ये इस्लाम सही भी है कि नहीं, कुरान ठीक भी है कि नहीं, या कुछ और, किसी के बारे में कोई वसवसा आ सकता है, फलां ख़राब है, शौहर पे शक हो सकता है, बीवी पे शक हो सकता है, तो फौरन से पहले उस शुबहे को दूर कर लें। नबी सल्लम ने एक मौके पे अपनी बीवी के साथ जा जब गए तो दो लोग आदमियों को देखा तो फौरन कहा कि देखो मैं मोहम्मद सल्लम और मेरे साथ ये मेरी बीवी सफ़ी हैं। लोगों ने कहा अल्लाह के नबी आप हमें क्यों ये कह रहे हैं, क्या हम आपके बारे में शक करेंगे, क्या आप एक औरत के साथ रात को जा रहे थे? तो आपने कहा कि हाँ इसलिए कि इंसान के अंदर शैतान रहता है जो उसको वसवसे डालता है, तो कहीं भी कोई शक आए तो उसको निकाल दें। फिर अगली बात यह है कि इज्तमाईत की कोशिशों जिस शख्स की ज़िंदगी में होती है ना, यानी अकेली भेड़ को भेड़िया खा लेता है, एक मारूफ बात है, और जो भेड़ें बहुत सारे गिरोह के अंदर होती हैं ना उनको भेड़िया नहीं खाता, इसी तरह शैतान हमेशा उस बंदे के ऊपर हमला करता है जो अपने अकायद में अपने नज़रियात में एक अछूता ख्याल पेश करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बिल्कुल नई चीज़ कहना चाहते हैं, आगे से आगे बात करना चाहते हैं, तो मिल के रहना, आप इसको ये कह लें कि इज्तमाईत का मिजाज जो होता है, ऐसे शख्स पे भी शैतान का असर कम से कम होता है इंशाल्लाह ताला। फिर अगली चीज़ जो है जादू से बचने की, नमाज की सफ़ों में खाली जगह ना छोड़ना। नबी सल्लम ने फरमाया कि नमाजी सीसा पिलाई दीवार की तरह अपने आप को एक कर लें, क्योंकि जब बीच में सफ़ में खलल होता है तो शैतान बीच में आता है और शैतान फिर इंसान को गलत चीज़ों की तरफ में लेता है। एक मौके पे ऐसा हुआ तो आपने कहा कि शैतान भेड़ के बच्चे की शक्ल में सफ़ के बीच में आके दाखिल हो रहा था। इस तरह की बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं कि शैतान इंसानों को इस तरह से लेके जाता है। फिर एक और चीज़ जो है जो हमें ऐसी तमाम चीज़ों से बचा सकती है, वो क्या है कि तन्हाई में एक औरत और एक मर्द का अकेले ना होना, यानी खलवत जिसको बोलते हैं। नबी सल्लम ने फरमाया कि जब कोई मर्द किसी गैर औरत के साथ तन्हा होता है तो तीसरा उनमें शैतान होता है, और शैतान जब आएगा तो वो गलत ही काम करवाएगा ना। ये जादू और उसकी सारी रास्ते की चीज़ें हैं, आप समझते हैं जादू को बहुत बड़ी चीज़ है, ये कुछ भी नहीं है, ये लफ्ज़ों का खेल है। जैसे मैं आप में से किसी से कहूँ कि आप बहुत नाइस हैं तो आपके अंदर एक खुशी का एहसास होगा ना, इसी तरह किसी को कोई बुरा कह दे आप बहुत ऐसी हैं, कोई गाली दे तो आपको तकलीफ़ होती है ना, ये तकलीफ़ हमारे रूह को जिस्म को होती है ना, या सुनते हैं तो हमें तकलीफ़। इसी तरह जब जादू के कुछ लफ्ज़ बोले जाते हैं, मसलन कोई आपके सामने खड़ा हो कि आपको एक दफ़ा गाली दे तो आपको गुस्सा आएगा, लेकिन कोई गालियों की तकरार ही करता जाए तो आपको ज़्यादा गुस्सा आएगा ना। तो जादू सिर्फ कलीमात है, कुछ बातें दोहराते हैं ये आपके खिलाफ, और इसका इलाज है ही सिर्फ इंसान के पास से कि वो अपने आप को मजबूत करे, अपनी विल पावर को मजबूत करे, फिर हर वो काम छोड़े जिससे शैतान खुश होता है। अगर हम चाहते हैं कि हम पे से शैतान का असर कम हो तो शैतानी कामों को कम करें। जो लोग गाने सुनते हैं, जो इस तरह की फुखर चीज़ों को देखते हैं, उनके ऊपर शैतान का बहुत असर होता है, और अमूमन वही ऐसी चीज़ों का शिकार होते हैं। फिर इसी तरह एक और चीज़ है कि औरत का तन्हा घर से बाहर निकलना, यानी नबी सल्लम ने फरमाया कि औरत पर्दे की चीज़ है, जब वो घर से बाहर निकलती है तो शैतान इसकी ताक में लगा रहता है। अब अकेली किसी मजबूरी से अगर कोई निकलती भी है तो कम से कम रात से पहले या अंधेरे से पहले उस औरत को अपने घर में होना चाहिए। ठीक है, अब आपके जहन में सवाल होगा कि हम पढ़ने के लिए निकलते हैं जाते हैं, ठीक है, अगर आपको अल्लाह ताला ने सारी सहूलतें दी हुई हैं और आप दिन ही दिन में अपने ही शहर के अंदर फिरते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। अब ये मुमकिन नहीं है कि हर वक्त हर औरत के साथ कोई महरम हो और वो सारा दिन उसके साथ रहे, लेकिन अपनी हिफाजत लाजमी है। जब औरत बड़ी बोल्ड बनती है ना, मैं अकेली जा सकती हूँ, 4 घंटे दूर दूसरा शहर है, और औरतें कहती हैं हम ड्राइव करके जाएंगे, रास्ते में गाड़ी ख़राब हो सकती है, कुछ भी होता है, तो बहरहाल जब हम हदों को पामाल करते हैं तो फिर इस तरह से बातें होती हैं।